Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan Krishna Jajurvedike तैत्तिरीय शाखा में यह श्वेताश्वतर उपनिषद प्राप्त है। इस उपनिषद विद्या ऋषियों के दर्शन विद्या है। उपनिषद के ऋषियों के मन में नाना प्रकार के सृष्टि रहस्यों को लेकर के प्रश्न, ऐसे तो वेदांत में जीव जगत और ईश्वर के बारे में ही विचार है, परंतु ऋषियों के मन में सृष्टि तत्व को लेकर के गंभीर संशय रहस्य को लेकर के रहा। केवल सृष्टि रहस्य को लेकर के ही नहीं, साथ साथ ब्रह्म तत्व को लेकर के भी नाना प्रकार के प्रश्न मन में उठते रहे। और ये जो जरा मरण धर्मा जो मानव है, तो इस मानव जीवन के सर्वोत्तम मंगल क्या है, अथवा यह मानव किस प्रकार परम निःश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय को लेकर के भी नाना प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न के तीन कैटेगरी हम समझ सकते हैं। सृष्टि रहस्य को लेकर के प्रश्न, ब्रह्म तत्व को लेकर के नाना प्रकार के प्रश्न, और यह जरा मरण धर्मा जो मानव है, इस मानव का परम मंगल क्या है, अर्थात यह मानव परम निःश्रेयस को कैसे प्राप्त करे, अर्थात निःश्रेयस किसमें है, तो कैसे इसको, ये तीनों प्रश्न का उत्तर उन्होंने कैसे ढूंढा। उपनिषद के जो भी जितने भी हमने अध्ययन किया, आप लोगों को भी पता लगा ही होगा, दो तरीका उनके जीवन में उनके दर्शनों में प्राप्त होते हैं। एक तो सब मिलकर के पर्यालोचन विचार करते हैं, विचार के द्वारा सत्य को जान पाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और उस विचार में तर्क को विपक्ष को रख करके तत्व निश्चयार्थ विचार, और वे लोग निश्चय को प्राप्त करते थे। जो भी समस्या है, संशय है, जिस प्रश्न को लेकर के विचार करने बैठते थे, तो विचार का पर्यवसान सत्य दर्शन। और द्वितीय, जब ऐसा उनको लगता था कि विचार के द्वारा भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अथवा समस्या का समाधान हल नहीं निकल पा रहा है, तब वे लोग जो है शांत समाहित चित्त से ध्यान मग्न होकर के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते। अतः दो ही है जो हम लोग भी कहीं ना कहीं दो ही अपनाते हैं। एक तो पहले विचार करते हैं, अथवा विचार के द्वारा जो सुलझता नहीं है तो उसको हम जो है और शांत होकर, समाहित होकर, ध्यानमग्न होकर के उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। इतना सुनने के बाद, जानने के बाद उपनिषद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है भाई? उपनिषद क्या है? एकदम साफ अर्थ निकल आता है। उपनिषद अर्थ है कि ऋषियों के गंभीर चिंतन का, मनन का, निधिध्यासन का फल है उपनिषद। क्योंकि ऋषयः मंत्र द्रष्टार, ऐसा हम सुने हैं, ऋषि वो है जो मंत्र द्रष्टा, मुनि वो है जो मननशील। तो उपनिषद शब्द का अर्थ कुछ भी हो, उपनिषद आदि आदि आप जानते हैं, परंतु उपनिषद का विचार, उपनिषद विचार मतलब ऋषियों के मनन का, ऋषियों के निधिध्यासन का जो फल है वो है उपनिषद। इसीलिए उपनिषदों को काल्पनिक कल्पना मात्र मानना अनुचित, नासमझ की बात है। इसीलिए भगवत भक्तजन, ऋषियों ने जीवन भर जो गंभीर ध्यानमग्न होकर के निधिध्यासन मनन और निधिध्यासन जन्य जो फल उनको मिला वो है उपनिषद। इसीलिए वेद के जो भी भाग हमें मिलता है, कर्म कांड और उपासना कांड और ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड को अगर एक कोटि में रखे तो ये दो मिलकर के एक श्रेणी और ज्ञान कांड दूसरा श्रेणी। तो उपनिषदों के जो विचार है, फल है, ऋषियों के जो विचार का मंथन का जो फल है उपनिषद, तो फिर वेद के जो अन्य भाग है, कर्म कांड, उपासना कांड, इसको हम कैसे समझे? क्या ये व्यर्थ है? कहते नहीं, दो प्रकार के व्यक्ति जीवन में अर्थात मनुष्य में है, दोनों के लिए ही उपनिषद अथवा पूरे वेद समूह को विचार करना चाहिए। परंतु जब हम उपनिषद के अध्ययन करते हैं तो उपनिषद की ऋषियों के दृष्टि से वेद के जो कर्म कांड है वो क्या है, उनके विचार से, उनके मत में ये जो वेद के कर्म कांड है, क्रिया समूह है, इस कर्म के द्वारा, शास्त्रीय विधि के द्वारा अर्चन यज्ञ आदि करने पर इहलौकिक सुख भोग प्राप्त हो सकता है। केवल इहलौकिक नहीं, पारलौकिक भोग को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भौतिक सुख समृद्धि अगर चाहिए तो वेद के कर्म कांड भाग को अपनाइए। परंतु इस कर्म कांड के द्वारा मानव जीवन का परम मंगल क्या है, वो जो प्रश्न उनके मन में था वो समाधान नहीं होता है। इसलिए वेद के जो कर्म कांड है वो केवल मात्र इहलौकिक पारलौकिक सुख भोग को ही प्राप्त करा सकता है। और साफ लिखते हैं उपनिषद में, आपको मिला हुआ कर्म कांड के प्रति, वेद के उस कर्म भाग क्रिया के प्रति जिनके चित्त आकृष्ट है वो कहीं न कहीं मोहग्रस्त है। सुनने में बहुत खराब लगता है परंतु यथार्थ कथन है ना भाई। भौतिक सुख चाहिए, इसका मतलब सुख भोग के प्रति एक लालसा है, एक मोह है, एक आकर्षण है, एक अटैचमेंट है, अतः आपके चित्त जिनके भी कर्म कांड में आसक्ति ज्यादा है वो निश्चित रूप से भोग के प्रति आसक्त वाला है। हाँ, यह लोक में सुख भोग मिलेगा, परलोक में स्वर्ग प्राप्ति, इतने ही कर्म कांड के गति है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कर्म कांड की गति स्थिति क्या है और ज्ञान कांड की गति स्थिति प्राप्ति क्या है। तो कर्म कांड के गति स्थिति और प्राप्ति स्वर्ग तक है और ये स्वर्ग भी बाद में क्षणे पुण्य आदि श्लोक के द्वारा हम जानते यहां ही आना पड़ता है, परंतु इससे भी श्रेष्ठ परम मंगलमय निःश्रेयस प्राप्ति कुछ है क्या? ऋषियों ने कहा कि मानव जीवन में निःश्रेयस के बिना वो जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब तक अविद्या से ग्रस्त है, मोहग्रस्त चित्त है, तब तक वो कर्म कांड में आसक्त रहता है और इस कर्म कांड आसक्त चित्त व्यक्ति वो कभी भी परम मंगल को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात निःश्रेयस को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए इस अविद्या को दूर करना है, वो है ऋषि प्रणीत विद्या के द्वारा, जिस विद्या का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए अविद्या की स्थिति और कहां तक है और फिर अविद्या से जीवन के आत्यंतिक पूर्णता फल प्राप्ति निःश्रेयस परम मंगल नहीं हो सकता है, तब जाकर के वो एक उपनिषद चिंतन में, उपनिषद के मनन में लग सकते हैं। मुंडक उपनिषदों में हम लोगों ने देखा भी द्वे विद्ये वेदितव्ये, क्योंकि विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होगा ना, तो कौन सा वो विद्या है जिसके द्वारा आप अविद्या को अपनोदन करना चाहते हैं, उसी को बतला रहे हैं कि द्वे विद्ये अपराच पराच। अपरा विद्या क्या है? वेद चतुष्टय, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद चतुष्टय अपरा विद्या है और वेदांग छह है, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये छह जो है, छह अंग के साथ जो वेद चतुष्टय है ये सब अपरा विद्या है। और ये तो वैदिक ऋषियों के ये है, परंतु वर्तमान में जो जो विद्या हम ग्रहण करके चल रहे हैं, शिक्षित मान रहे हैं, ये सब के सब भौतिकी विद्या है, जागत की विद्या है, इसके द्वारा परम निःश्रेष को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी मुंडक में अपरा विद्या के बाद विद्या परा विद्या का विचार आया है। परा विद्या कौन है? साप, वो जो एक मंत्र जैसा शब्द है आपको याद होगा, यया तद अधिगम्यते, इतना ही लिखते हैं। अपरा विद्या के बाद परा का जब डेफिनेशन देना होता है, मुंडक ऋषि लिखते हैं यया तद अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, यया तद अधिगम्यते। इसीलिए जब तक उस परम प्राप्ति, परम तत्व को आप नहीं जान लेंगे, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक निःश्रेयस को प्राप्त, परम मंगल को प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए भगवत भक्तजन भौतिकी विद्या, लौकिक विद्या, इसकी जो सीमा है उसको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। उन्नति हम चाहते हैं, परंतु इस उन्नति के द्वारा हमें श्रेय को प्राप्त नहीं हो सकता, परम मंगल नहीं मिल सकता है। अगर परम मंगल को चाहिए तो एकमात्र उपनिषद विचार, ये जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ उपनिषद, मनन निदिध्यासन फल जो उपनिषद है, इसके मनन से, इसके चिंतन से, इसके ध्यान से ही हमें परम निश्रेयस और मानव जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, जब भी हम उपनिषदों का अध्ययन करें, उपनिषद इतना निश्चय रखे कि उपनिषद जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पूरे उपनिषदों के ऊपर ऋषियों का एक परम कल्याण भावना है कि मानव परम श्रेय को प्राप्त करे। तो इसीलिए कहीं न कहीं वो जो भाव है वो हमारे चित्त में बिल्कुल, जब भी हम उपनिषदों का चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, वो भाव रखे कि ये ऋषि हमारे लिए जो चिंतन करके रखा है कि हमारा परम मंगल किसमें है। और उसी प्रसंग को देखिए, आज हम लोग भी पहुंचे हैं कि ते ध्यान योग अनुगते। तो ये जो ध्यान योग के द्वारा उनके जो समग्र जीवन के जो परम मंगल का जो प्रश्न रहस्य था कि कैसे ये मानव परम श्रेय को प्राप्त करे, वो कैसे प्राप्त किया? ध्यान योग के द्वारा। और वही विचार आज भी हम लोगों ने अध्ययन करने के लिए तत्पर है कि कैसे मानव परम श्रेय को प्राप्त कर सकते। इसलिए उपनिषद के विद्या से ही अविद्या का अपनोदन संभव है, और उस अविद्या के अपनोदन, अविद्या के उच्छेद से ही आप अपने स्वरूप को, परम रूप को जान सकते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अभी जो हम स्वरूप जानते हैं ना, ये सुरूप नहीं है, ये कुरूप है। इतना अच्छा लगा कि हम लोग बड़े सेटिस्फाइड होते कि मैं बहुत बोलते, भाई अभी जो तुम स्वरूप जानते हो वह स्वरूप नहीं, ये तो कुरूप, अन्य रूप को ही जान करके हम चल रहे हैं ना। तुम्हारा स्वरूप तो है सच्चिदानंद, वो तो महाराज उपनिषद विचार के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करने से ही हमारा जीवन का परम मंगल है। इसलिए भगवत भक्तजन, वैसा ही भगवान की कृपा अनुग्रह है कि उपनिषद अध्ययन का एक सुअवसर जीवन में मिला, और उस आत्मदर्शन करने पर ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, वो फल हमें मिलने वाला है, वही परम मंगलमय है। प्रथम तृतीय मंत्र का उच्चारण करते हैं। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् या कारणानि निखिलानि तानि या कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्त्यान्यधितिष्ठत्येक कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढाम् य कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक इसका अन्वय और अर्थ थोड़ा और देख लीजिए। ते शब्द के द्वारा पूर्व उक्त का परामर्श कीजिए। ते ऋषयः स्वगुणैर ध्यान योगानुगता अर्थात सत्व रज तम गुण के द्वारा समाहित हो करके ध्यान योग के द्वारा निगूढ़ाम देवात्म शक्तिम आपश्यन जो निगूढ़ है। कौन है निगूढ़? ये जो स्वगुणैर गुणों से आवृत आच्छादित कौन है? देवात्म शक्ति। तो ये देवात्म शक्ति क्या है? परमेश्वर के आत्म शक्ति। भाष्य का अनुसंधान जब करेंगे और स्पष्ट होगा। वो आत्मभूत जो शक्ति है आपश्यन वे ऋषि लोग जो है देखे। अर्थात देखना मतलब क्या है? ये भी तो आप लोग देख रहे हैं ना, तो कैसा? ये ऐसा दर्शन नहीं, आत्म साक्षात्कार किया। वो आत्म शक्ति के साक्षात्कार किए। ये दो चरण का हो गया। द्वितीय चरण में यह शब्द को लेकर के आया ना, यह एक है, उसके साथ अन्वय कीजिए। अंतिम में जो एक है ना,